ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण पांचवें स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 5 से लेकर के 10 तक। तो हम 10 का पुनरावर्ती करेंगे और आगे। तथा एव इलावृत अपरेण पूर्वेण च माल्यवाद गंधमादनौ आनीला निस आयधौ निषद आयतौ द्विसहस्रम् पप्रथो प्रपथतु केतुमाला भद्राशयः सीमानं विदधाते। तथैव इलावृतम् परेण पूर्वेण च माल्यवत् गंधमादनौ अनिल निषद आयातौ द्विसहस्र पप्रथतु केतुमाल भद्राशयः सीमानं विधादते। एनीवे श्लोक के रूप में गद्य के रूप में है। तथा एव उनके ही समान इलावृतम अपरेण इलावृत वर्ष के पश्चिम में पूर्वेण च और पूर्व दिशा में भी माल्यवद गंधमादनै पश्चिम में माल्यवान तथा पूर्व में गंधमादन सीमा बनाने वाले पर्वत अनिल निषद आयतौ उत्तर दिशा में नील पर्वत तथा नील पर्वत तक और दक्षिण दिशा में निषद पर्वत तक द्विसहस्रम 2000 योजन पप्रथतु फैले हुए हैं केतुमाल भद्राश्रयो केतुमाल तथा भद्राश्व इन दो वर्षों की सीमानम सीमा विदधाते स्थापना करते हैं। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान और गंधमादन नामक दो विशाल पर्वत हैं। ये दोनों 2000 योजन यानी 16000 मील ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक तथा दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलावृत वर्ष की और केतुमाल तथा भद्राश्व नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक हैं। तात्पर्य, इस पृथ्वी ग्रह पर ही न जाने कितने पर्वत हैं जिनकी ठीक से माप नहीं हो पाई है। मैक्सिको के काराकास के मध्य पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से यात्रा करते हुए हमने इतने पर्वत देखे हैं कि शायद ही उन सबों की ठीक ठीक ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई नापी गई हो। अतः जैसा सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इंगित किया है, हमें मात्र अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह पहले ही कह दिया है कि ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी इनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक विद्वानों के कथन से संतुष्ट हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान की माया से यह सारा ब्रह्मांड किस प्रकार संभव हो सकता है। यहाँ पर जो प्रमाण दिए गए हैं यथा 10,000 या 1,00,000 जो जन, उन्हें सही मानना चाहिए, क्योंकि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए हैं। हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से श्रीमद् भागवत के कथनों की न तो पुष्टि हो सकती है न अपुष्टि। हमें विद्वानों के मुख से ऐसे कथनों का श्रवण मात्र करना चाहिए। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्ति को समझ सके तो इसमें हम लाभान्वित ही होंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसपुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शूलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पद्रव्यश्च कृपासिन्धुमयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक 5 से प्रारंभ करेंगे। भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है और इसके सातों द्वीप पुष्प कोष के सदृश हैं। इस कोष के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10,00,000 योजन यानी 80,00,000 मील है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं जे खंड कहते हैं। उनमें से प्रत्येक की लंबाई 9,000 योजन यानी 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं जो उन्हें भली भांति बिलग करते हैं। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वायु पुराण में निम्नलिखित उदाहरण दिया है। जिसमें हिमालय पर्वत के से आरंभ करके विभिन्न पर्वतों की स्थितियां दी गई है। इन खंडों वर्षों में से इलाव्रत नाम का एक वर्ष है जो कमल कोष के मध्य में स्थित है। इलाव्रत वर्ष में ही सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई जम्बूद्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1,00,000 योजन या 8,00,000 मील है, जिसमें से 16,000 योजन यानी 1,28,000 मील पृथ्वी के भीतर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन यानी 6,72,000 मील ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन यानी 2,56,000 मील है और पाद भाग पर 16,000 योजन है। इलाव्रत वर्ष में सुदूर उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक तीन पर्वत है। ये तीनों रम्यक, हिरणमय तथा कुरु इन तीन वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। इन पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन यानी 16,000 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट तक विस्तृत हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने का प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की 1/10 होती जाती है, किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है। इस संबंध में माधवाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त एक अन्य अदृश्य ग्रह भी है जिसे राहु कहते हैं। राहु के गतिशील होने से सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगते हैं। हमारा सुझाव है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो आधुनिक यात्राएं की जा रही है वे भूल से राहु तक जाती है। इसी प्रकार इलाव्रत वर्ष के दक्षिण में तथा पूर्व में से पश्चिम को फैले हुए तीन विशाल पर्वत हैं। उत्तर से दक्षिण को जिनके नाम हैं निषद, हेमकूट तथा हिमालय। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। ये हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भारत वर्ष नामक तीन वर्षों की सीमाओं के सूचक हैं। इसी प्रकार से इलाव्रत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान और गंधमादक नामक दो विशाल पर्वत हैं। ये दोनों 2,000 योजन यानी 16,000 मील ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तथा दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलाव्रत वर्ष की और केतुमाल तथा भद्रासु नामक पर्वतों के भी सीमाओं के सूचक हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात बताए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वह बात है कि हमें अथॉरिटी का बात मानना। हम लोगों में चार प्रकार की त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों में से एक त्रुटि है अपूर्ण इंद्रियां। किसी वस्तु का नाप जोख कोई करना चाहे या देखना चाहे तो उसके दृष्टि में भेद हो सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं, जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो चश्मा बनाने वाले के पास, तो अलग अलग लेंस लगाते हैं, और कहते हैं पढ़ो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, यही करते हैं ना। कितने चश्मा वाले हैं, हाथ उठाओ तो। सब लोग ऐसा हुआ ना ब्रजविलास, ऐसा हुआ ना, वो दिखाते हैं, अब देखो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो यही केवल मात्र कोई वस्तु देखने के लिए जितने लोग हैं सब में अलग अलग लेंस लगाना पड़ता है, क्लियर करने के कौन क्लियर है यहीं पर संसार में। अब ये जो वस्तुएं हैं जो 10,000 योजन है यानी 80,000 मील है, अपने इस भौतिक इंद्रियों से हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं। और वैसे भी समय बड़ा कम है, कौन इसके पीछे दौड़े नापने के लिए। बेसिकली यहाँ पर सभी पर्वतों का वर्णन किया जा रहा है, ये पर्वत नापने जाओ जीवन खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो पेड़ लगाने के बदले में फल खरीद करके खा लेता है। वो पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा, पहले के साधु महात्मा लोग वो चूल्हा चपड़ नहीं लगाते थे, जाकर मधुकरी कर लिए हो गया, कौन भोजन बनाने का हिडक ले, क्योंकि लक्ष्य है भजन करना, भजन करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय व्यय नहीं करना चाहिए ये फालतू के कार्यों में। जिनका काम है वो करते रहें। कुछ साल पहले मैं रसिया जा रहा था और दिल्ली से जब फ्लाइट पर चढ़े तो पता नहीं दिल्ली के बाद ही केवल पहाड़ दिखाई पड़ रहा था, फ्लाइट से रसिया तक केवल पहाड़े दिखाई पड़ रहा था, हिमालय से होकर गए केवल पहाड़े दिखाई पड़ रहा था, और पहाड़ की ऊंचाई बहुत ऊंची थी और प्लेन वहां से कितना दूर जाएगा, ऊपर चला गया तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए वहां से ठीक दिखाई पड़ रहा था, जैसे प्लेन लैंड होता है दिखाई पड़ता है सब कुछ, वैसे ही पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे। तो वहां केवल पहाड़ ही पहाड़ हैं। यदि कोई लंदन जाए या लंदन से अमेरिका जाए तो केवल पानी पानी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि समुद्र है। अब इन पहाड़ों का गणना कौन करेगा, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना गहराई है, मुश्किल है। अभी मैं अमेरिका से आया, लिटिल रॉक एक जगह है अरकांसास, वहां हम गए थे एक पहाड़ के गुफा में। वह गुफा कम से कम 20-25 किलोमीटर में है और नेचुरल गुफा है, कोई बनाया नहीं है गुफा, वो नेचुरल गुफा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट व्यवस्था की है, बहुत लोग जाते हैं तो जाने का साधन है, लाइट वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन वो नेचुरल गुफा है। वैसे ही एरिजोना में एक पहाड़ है, आदि क्या नाम है उस पहाड़ का, जहां पर बीच में फटा हुआ है पहाड़, दो तरफ पहाड़ है बीच में फटा हुआ है, पानी है और इतना आंधी तूफान वहां से आता है, बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए। तो भगवान जो बना दिए इंसान क्या बना सकता है, और भगवान को नापना हमारा मूर्खता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उसकुप मंडुक मेढक का, उस मेढक के पास एक अतिथि आ गया, उसका रिश्तेदार, वो समुद्र से आया था। तो पूछा भाई तू कहां से आया है, कहा मैं समुद्र से आया हूँ। कहा समुद्र किसे कहते हैं, कहा पानी का आगार है, कहा हमारे से बड़ा है क्या, कहा बिल्कुल, कहा कितना है, इतना है, कहा नहीं भाई और बड़ा है, इतना है इतना है इतना है, ना बूम फट गया। तो हम नाप नहीं सकते हैं, हम कुप मंडूक मिढक के समान हैं। ये जो इस प्रकार का वार्ता करना केवल प्रजल्प है, जैसे गांव के लोग बैठ करके और प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को नीचे उतारते हैं, हैं? प्रजल्प कहते हैं, गांव वाले बैठकर कहते हैं ऐसे उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, मैं यदि होता तो ये करता, ये केवल समय की बर्बादी है। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात बताए हैं कि जो भी यहां पर बताया गया है हमें सुखदेव गोस्वामी जो बताए वो क्या फायदा है इस प्रकार से ब्लफ कर करके, क्योंकि ब्लफ कर सकते हैं, इतना बड़ा पहाड़ कहां हो सकता है, उन्हों क्या फायदा है, ना तो चेला बनाना है ना धन कमाना है, किसके लिए ऐसा करेंगे वे। और वो भी प्रचार कर रहे हैं किसको, परीक्षित महाराज के जो राजा हैं, जिनके पास सब कुछ गणना होनी चाहिए, कम से कम राजा हैं सब कुछ जानना चाहिए, उनका वो क्षेत्रफल उनका क्षेत्र है, उनका वह राज्य है। सुखदेव गोस्वामी इन सब बातों का वर्णन किए हैं परीक्षित महाराज से, परीक्षित महाराज के माध्यम से हम लोगों को बताने के लिए कि हम कम से कम जाने तो कि हम जिस स्थली पर हैं वो है क्या, भगवान का क्रिएशन क्या है, भगवान क्या है, ये भगवान की महानता बतलाती है ये सब बातें, भगवान कितने महान है। तो इसलिए इन सब कार्यों में माथा पेची न करके हमें सीधे प्रमाणिक सोर्स से जो बात कही जाती है उसे स्वीकार करना चाहिए। गुरु परंपरा, इसे गुरु परंपरा जानो भालो मोते। और जो व्यक्ति प्रमाणिक सोर्स को स्वीकार नहीं करता है और अपने को संतुष्ट करने के लिए काम करना शुरू करता है तो उसकी गति बड़ी खराब होती है, गति बड़ी खराब होती है। भगवान गीता में कहते हैं यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न तो सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र में बताए गए हैं, जो अथॉरिटी बता रहे हैं, उनको न मान करके और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम करना प्रारंभ करे, चाहे वो फिजिकल हो इंद्रिय तृप्ति, चाहे वो मेंटल इंद्रिय तृप्ति हो। साइंटिस्ट लोग हैं उनको फिजिकल इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं है, ये साइंटिस्ट लोग हाफ पागल होते हैं देखोगे तो, देखने में कोई है यहाँ पर, हम तो देखे हैं, न तो उनको खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न तो बाल सेविंग करने का ठिकाना, न कपड़ा धोने का ठिकाना, वो दिन भर सोचते रहते हैं मन में, उन वो फिजिकल आनंद नहीं चाहते हैं, वो मेंटल आनंद चाहते हैं, वो भी आनंद है। कोई फिजिकल आनंद के लिए शास्त्र के नियम कानून को त्यागता है और कोई मेंटल आनंद के लिए। यदि साइंटिस्ट लोग ये मान ले सब कुछ तो व्यर्थ का इतना पैसा खर्चा हो रहा है, चंद्रयान पर जाना, सूर्ययान पर जाना, कहाँ कहाँ किस लोक पर जाना, क्या बर्बाद करने का पैसा। उस पैसा से बहुत लोग बेचारे भजन, बहुत मंदिर बन सकता है, क्लासरूम बन सकता है, प्रचार हो सकता है, पूरा जगह वैकुंठ बन जाएगा, करोड़ों रुपया लग रहे हैं, क्या मिलता है, जा करके थोड़ा धूल लेकर के आ गए, अरे तो भागवतम में वर्णन किया गया कहाँ पर नहीं रह सकते, क्या फायदा। अब नहीं रह सकते हैं तो रहने योग बनाते हैं, उसके लिए अलग पैसा खर्चा करो, ऑक्सीजन गैस पहुंचाओ, क्या क्या करो। तो ये अपव्यय है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, ये व्यय है, बर्बाद करना है, धन बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। उस धन जीवन और समय को लगाकर यदि भगवान का हम भजन करें तो जब तक हैं सुखी रहेंगे और मरने के बाद परम धाम को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शास्त्र के नियम कानून को स्वीकार कर करके और पालन करता है। ये बात सही है कि शास्त्र का नियम कानून या अथॉरिटी के द्वारा बताया गया बात हो सकता है हमारे अनुसार न हो। हम कुछ चाहते हैं, अथॉरिटी कुछ कह दे या शास्त्र कुछ कह दे, हमारे अनुसार न हो। लेकिन जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, हमेशा के लिए परमानेंट सुख की प्राप्ति करना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि निस्संदेह भाव से वह शास्त्र और साधु के बातों को स्वीकार करे, भले ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, तैयार रहे कठिनाई का सामना करने के लिए, और फिर जीवन के अंत में उसे आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो साधु शास्त्र के बात को न मान करके अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार का हैप्पीनेस होता है, एक इमीडिएट हैप्पीनेस और एक अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो इमीडिएट हैप्पीनेस का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना, उसके लिए नियम कानून की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहता है उसे तो नियम कानून पालन करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है हम पर कि हम क्या चाहते हैं। जो इमीडिएट हैप्पीनेस चाहता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करता है, इसीलिए उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज। ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किसी का बात नहीं मानेंगे। शास्त्र विद्धिम उत्सृज, शास्त्र मतलब साधु और शास्त्र, साधु जो शास्त्र को शास्त्र के विषय में बताते हैं वे, या भगवान जो शास्त्र के निर्माता हैं, जो धर्म के निर्माता हैं, तो वे लोग शास्त्र को, भगवान को, साधु को, सबका उल्लंघन करते हैं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत। कारण क्या है? कामकारत, इंद्रिय तृप्ति। एक ऐसी विडंबना है कि इंद्रियां कभी तृप्त हो सकती ही नहीं है। हमारे परदादा मर गए इंद्रिय तृप्त करते करते, दादा मर गए इंद्रिय तृप्त, बाप मर गए, हम भी उसी रास्ते में हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि इंद्रियों को तृप्त कर लेंगे। ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? पश्यम अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे अंधे हो गए हैं। इंद्रियां हमारी कभी तृप्त हो ही नहीं सकती क्योंकि अपूर्ण है। एक ग्लास है, ग्लास में छेद करो पानी भरते जाओ, भर सकते हैं इसको? कभी नहीं, क्योंकि इसमें छेद है। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। एक ही व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां पूर्ण है, वो कौन है? कृष्ण। अब एक ग्लास है, इसमें छेद है, पानी भरो कभी नहीं भर सकते हो, लेकिन पानी भरे हुए ग्लास को एक बाल्टी पानी में रख दो, खाली होगा कभी? माता जी लो, आप लोग एक्सपर्ट हो, वो खाली होगा? उसमें छेद है लेकिन फिर भी खाली नहीं होगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पानी के आधार में है। तो हम लोगों की इंद्रियां अपूर्ण हैं, कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, और भगवान की इंद्रियां पूर्ण हैं। भगवान सब प्रकार से पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्यात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। वेद में सब वर्ण भगवान पूर्ण है, सब प्रकार से पूर्ण है। उन पूर्ण के साथ हम जुड़ जाएं तो अपूर्ण इंद्रियों के बावजूद भी हम पूर्ण हो सकते हैं। कितना सुंदर तरीका है पूर्ण होने का, कितना सुंदर तरीका है सुखी होने का। हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, हम भूल जाते हैं, भगवान कभी भूलते ही नहीं है। तो भगवान के साथ में रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कोई भूलते नहीं भक्त लोग। अरे इस जन्म का कई जन्म का बात जानते हैं भगत लोग। हम लोग जानते हैं कि नारद जी जब व्यास जी से बता रहे थे तो अपने पूर्व जन्म बता रहे थे, कैसे पूर्व जन्म दासी पुत्र थे, कैसे कैसे क्या हुआ, भूले ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ में हैं जिनके पास भूलने का कोई चांस ही नहीं है। हम मोहमाया में पढ़ते हैं, सबसे बड़ी माया है कि हम सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान कहते हैं दुखालय में शाश्वतम, ये दुख का घर है, हम समझते हैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी हम हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब उनमें गोता लगाए, डुबकी मारे, जो हमेशा सुखी हैं, और वे हैं कृष्ण। सब हमेशा आनंद के स्वरूप हैं वे, सब प्रकार से रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, रिजर्वायर हैं वे, समुद्र हैं आनंद के। तो इस प्रकार से यदि इंद्रिय तृप्ति ही करनी है तो अच्छा है कि कृष्ण के साथ में रहकर इंद्रिय तृप्ति करें, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कृष्ण से अलग होकर के नियम कानून को तिलांजलि दे करके कोई इंद्रिय तृप्ति करेगा, यह शास्त्र विद्धि वर्तते कामकारत, ठीक है, लगे हुए हैं किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन गलती क्या कर देते हैं उस इंद्रिय तृप्ति में कि हम लोग भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु, उनके प्रतिनिधि अथॉरिटी, माता पिता, जो लोग भी बड़े लोग हमसे हैं, उन लोगों के आदेश का हम उल्लंघन करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, और भगवान थोड़े झूठ बोलते हैं कभी, भगवान कहते हैं 900 सिद्धिम अवाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सब कुछ छोड़ करके और जा रहे हैं, हम उस जिसके लिए जा रहे हैं उसे प्राप्त नहीं करेंगे, न सुखम, स्वाभाविक है जब प्राप्त नहीं करेंगे तो दुखी होगा, श्रम एव ही केवलम, केवल दुख होगा। और जीवन का लक्ष्य है परम गति को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना, और हम परम धाम को ही प्राप्त नहीं करेंगे। कितना चिंतनीय स्थिति है उन लोगों के लिए, या उन लोगों का जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि बाहर वालों का बात हो रहा है, ये हम लोगों पर ही अप्लाई पहले होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि साधु शास्त्र और गुरु के अनुसार कर रहे हैं। साधु और शास्त्र और गुरु के अनुसार कर रहे हैं भले ही हमें अच्छा ना लगे, लेकिन हम करेंगे तो करते 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 समय आएगा कि अच्छा लगने लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को जंडिस हो जाता है, डॉक्टर बोलता है तुम गन्ना का जूस पियो या गन्ना चूसो, पहले गन्ना बिटर लगता है, लेकिन वही गन्ना चूसते रहेगा जब जंडिस खत्म हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। शुरू शुरू में जब प्रभुपाद जी बताए इन विदेशी भक्तों को चार नियम पालन करना है, क्या समय तो अच्छा लग रहा था उन लोगों को, या हम इन लोगों को अच्छा लग रहा था, लहसुन प्याज खाने वालों लोगों को। लेकिन हम लोग त्यागे, अभी अच्छा लग रहा है, बल्कि जहां भोजन बनता है लहसुन प्याज है तो नाक बंद करना रहा, मछली मांस बनता हो तो वोमिट हो जाएगा, अच्छा लगने लगा। तो पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फॉलो करते करते अच्छा लग रहा है। थोड़ा कटु हो सकता है, लेकिन अच्छा लगेगा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमें जो नियम कानून बताए गए हैं, हम इस्कान के भक्त हैं, हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी अंतिम प्रमाण हैं। प्रभुपाद जी जो कह दिए हैं उसे हमें पालन करना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि जो कह रहे हैं उसे पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, शुरू शुरू में अच्छा से भजन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय के बाद वो सीनियर बन जाते हैं। सीनियर हुए नहीं हैं, मान लेते मैं सीनियर हो गया हूँ, दो चार पाँच साल रहने समझते हैं कि मैं सीनियर हो गया हूँ। वो काउंटिंग करते हैं सीनियरिटी को, कितना साल मैं इस्कान में अपना समय बिताया, और सीनियर हो गए तो मतलब अब आज्ञा पालन करने की जरूरत है, मैं सीनियर हूँ ना, अब क्या पालन करने की जरूरत है। सीनियरिटी एज से नहीं होती है, सीनियरिटी कितना दिन इस्कान में रहो उससे नहीं होती है। सीनियरिटी है कि आपकी आसक्ति कृष्ण में कितना बढ़ा और संसार से अनासक्ति कितना हुआ, इस सीनियरिटी का मापदंड है। कितना आप में नम्रता उत्पन्न हुआ, त्रिणादपि सुनी चेना तरो रवि सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये सब सीनियरिटी का मापदंड है, ना कि कब मैं ज्वाइन किया, कितना साल पहले दीक्षा लिया, कितना रहा, ये सीनियरिटी का मापदंड नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, यानी अपने आप को सीनियर समझना शुरू करेगा, वैसे ही भक्तों को अथॉरिटी का बात मानने में तकलीफ होता है, ये प्रमाण है, मैं जानता हूं, कई एक सालों से इसे डील कर रहा हूं। जो कच्चे आम हो जाते हैं, कच्चे आम को जल्दी पका दो वो पक जाते हैं दिखने में, तो तकलीफ वैसे लोगों को, कच्चे आमों को होता है, समझते हैं मैं सीनियर, उनके सीनियर है नहीं, वास्तव में ये सीनियर है वो अथॉरिटी का आज्ञा पालन करता है, यथावत एज इट इज। एक चीज है, हमारे एक प्रिय मित्र भक्त थे, प्रेम प्रदाय प्रभु नेपाल के, हम नहीं रहे बेचारे, ये 80s की बात है, मैं जुहू में टेम्पल कमांडर था, 82 एक दिन सुबह सुबह देखा प्रभुपाद जी के बगल में बैठे हुए हैं, दो ब्लैंकेट ओढ़ करके कांप रहे हैं। मैं कहा प्रेम प्रदाय क्या हो गया, कहा प्रभु प्रभु बुखार है, मैं देखा बहुत जल रहा है, मैं कहा क्या कर रहे हो, बुखार है आराम करना चाहिए, नो प्रभुपाद सेठ क्रॉल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगलारती, ये विश्वास प्रेम प्रदाय प्रभु का विश्वास था, यू आर सच ए नाइस जॉबलैंड हम्बुल डिवोटी एवरीबडी लव्ड हिम। तो गुरुमुखा पद्मावा का डेली गाते हैं, लेकिन हम लोग वो बात न मान करके सीनियरिटी के कार्ड आगे कर करके, वो सीनियरिटी कार्ड लेकर समझते हैं कि मैं, हम नियम कानून से परे हो गया, अब करने की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों के लिए भगवान सर्टिफिकेट देते हैं, उन कार्ड होल्डरों को 900 सिद्धिम अभाप्नोति न सुखम और न पराम गति। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कितना भी तकलीफ क्यों न हो, मैं अभी कानपुर में लेक्चर दे रहा था, बता रहा था कि इस्कान में कितना भी तकलीफ क्यों न हो, लेकिन हम लोगों को इस्कान रूपी नौका में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति तैर रहा है और वो डूबने लगा, उसमें वो शक्ति नहीं है, तैरना जानता नहीं है, डूब रहा है, और कोई नौका लेकर के आ गया और उसे नौका पर बैठा दिया, कुछ समय बाद समझा रहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिर कूद सकता हूं,
और कूदेगा तो क्या होगा, फिर डूबेगा। तो हम लोग बाहर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन किसी वैष्णव के कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से स्कान में आ गए हैं। भले तकलीफ थोड़ा होगा, जैसे नौका में मच्छर थे, कांटे चुभ रहे थे, जो कुछ भी था, खाने के प्रसाद भोजन भी नहीं था, लेकिन नौका में रहना उसके लिए जरूरी था, नहीं तो डूब जाएगा। वैसे ही कभी कभी कठिनाइयां हो सकती है इस्कान में भी, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी हमें प्रभुपाद का और इस्कान का कोई भी शरण ग्रहण शरण नहीं छोड़ना चाहिए। और अथॉरिटी में विश्वास कर करके, प्रभुपाद जी विश्वास कर करके, और जो बातें बताई जा रही हैं, वैदिक संस्कृति में श्रद्धा चाहिए किसी चीज को जानने के लिए। श्रद्धावान लभते जो मां, वैदिक संस्कृति में श्रद्धा चाहिए भगवान को भी जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, साधु को समझने के लिए, या किसी वस्तु के ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए। लेकिन भौतिक संस्कृति में प्रमाण चाहिए, प्रमाण मांगते हैं लोग। ये प्रमाण होगा तो लोग विश्वास करेंगे। अब कोई इन पर्वतों का इलावर्त वर्ष का कोई नापने जाए, कैसे नाप सकता है? केतुमाल का, इन पर्वतों को कैसे कोई नाप सकता है? उनको प्रमाण चाहिए, प्रमाण नहीं मिल सकता है। प्रमाण यही है कि जो सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, बस यही प्रमाण है। पहले कभी कभी हम लोग किसी भक्त से सुन लिए या कहीं पढ़ लिए आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले, और कभी कभी प्रवचन में हम लोग उस बात को कोट कर देते हैं, तो लोग कहते हैं ये आपने कहाँ से बोला, या प्रमाण क्या है? पहले देखना चाहिए कि वो सिद्धांत ठीक है कि नहीं। हो सकता है कि क्रम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कहने में, उसका नाम था मोहन और इसने श्याम कह दिया मान लो, तो लोग प्रमाण ढूंढ, ये कहते हैं बाल का खाल निकालना। सिद्धांत के लिए हम पूछ सकते हैं कि थोड़ा समझ में नहीं, बता सकते हैं क्या। अब कथानक है, उपक्रम है, हम पूरा भागवतम देखा जाए, एक क्रम में सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले भागवतम, वो तो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं, तो कभी कभी क्रम आगे पीछे भी हो गया है। उतना ही नहीं, कभी कभी दूसरे कल्प का ही बोल दिए हैं। अब कोई प्रमाण ढूंढने जाए, अबे ब्रह्म विमोहन लीला ही देख लीजिए, अभी कानपुर में वही चल रहा है ब्रह्म विमोहन लीला। ये ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था दूसरे कल्प में, इस कल्प में नहीं हुआ था। माधवाचार्य के अनुयायी लोग नहीं मानते हैं उसको। अब कोई सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करे, अरे ब्रह्मा जी तो आए नहीं थे, ये आपने कहां से बोल दिया? लोग प्रमाण नहीं मांगते थे, बल्कि लोग श्रद्धा के साथ में स्वीकार करते थे। पता नहीं अब वो दिन कब आएगा कि मां को प्रमाण देना पड़ेगा कि तू मेरा बेटा है। अब तक से नहीं आया है सर, कोई बेटा नहीं पूछा है ना। कुछ लोग बदमाश होंगे, कहें डीएनए टेस्ट कराओ, मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं हूं, कहीं से ऑफनेस तो नहीं उठा लेकर लाई। जमाना बड़ा खराब हो रहा है, इसलिए कृष्ण भावना संघ के जितने भक्त लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन ग्रंथों का प्रचार करें, जितना प्रचार हो सकता है प्रचार करो पुस्तकों का। प्रवचन करना ठीक है, कुछ समय तक कुछ लोग सुन सकते हैं, लेकिन ये पुस्तक वितरण जो है, इस्कान की स्थापना हुई थी पुस्तक वितरण कर कर करके, चाहे उससे धन आया उससे, चाहे लोग भक्त बने उससे। ये जरूरी है कि पुस्तक पढ़कर करके कोई भक्त बने, तब उसकी आस्था पुस्तक में लगी रहेगी। ये पुस्तक वितरण बहुत जरूरी है। तो प्रमाण के लिए हमें चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ में हम स्वीकार करेंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। एक छोटा कथानक कहता हूँ, ये भी मैं सुना था बहुत पहले, पूछना मत आप लोग कहाँ से है, मैं सुना था और रिपीट कर रहा हूँ। एक बार एक महात्मा थे, एक साधु, और वो सुबह सुबह उठ करके और भगवान का नाम करते थे। तो महात्मा तो जोर से करताल मृदंग बजा बजा कर मंगल आरती करते हैं। जहाँ महात्मा रहते थे उनके ऊपर या नीचे जो भी है एक व्यक्ति रहता था, अब सुबह सुबह ये उठ जाते थे, कीर्तन करते थे, उसको बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, महात्मा के पास आया लगा झगड़ा करने के लिए और कहा है तुम क्या करते हो, तो भगवान का भजन करते हैं। भजन करने से क्या होगा, क्या भोजन मिलेगा तुमको क्या, कहा जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अरे भगवान जब पूरे संसार को खिला हमें क्यों नहीं खिलाएंगे, हम तो उनका भजन कर रहे हैं, तुम खिला रहे हैं। तो महात्मा से चैलेंज किया कि भोजन मिलेगा, कहा हाँ ठीक है देखता हूँ, यदि आज भोजन मिल गया तो आपका बात मानूंगा और नहीं मिला तो आपको यहां से जाना पड़ेगा। महात्मा ने कहा ठीक है, अब वो चला गया जंगल में और वो ठान लिया कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, रात को जाकर महात्मा बताऊ आज मैं कुछ नहीं खाया हूं, आप यहां से जाओ। हो गया, पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। भारत गांवों का देश था, अभी भी है ना गांवों का देश, गांव में हट लगा हुआ था, बैलों का गायों का मेला लगा था। शाम के समय कुछ किसान लोग अपना गाय बेच बाच करके और कुछ बची हुई थी लेकर अपने अपने घर जा रहे थे। रात हो गया, जंगल का रास्ता था, सोचिए आज शाम को यहीं विश्राम कर लेते हैं, कल चलेंगे। वो लोग अपना डेरा डर वहाँ पर डाले और उनके पास गायें थी, गाय का दूध आया, सोचे क्या हम खीरे बना लेते हैं, खीर खा करके काम चला लेंगे। वो खीर बनाने लगे, तब तक से कुछ चोर लोग आए, तो कोई आदमी भाग करके आया, कहा चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं। वो लोग खीर उसी तरह से आग पर छोड़ करके गाय लेकर के भाग गए। अब ये डकैत लोग आए, बड़े बेचारे भूखे प्यासे थे, तो कुछ लोग खाने जा रहे थे। सरदार ने कहा चुप, कोई नहीं खाएगा, इस जंगल वीरान में कोई खीर बनाकर तुम्हारे लिए नहीं परोसा है, कुछ गड़बड़ जरूर है, लगता है कि इसमें कोई विष डाला है ताकि हम लोग खाएं और चले यहां से मर जाएं। सरदार ने कहा जाओ तुम लोग खोजो कौन किया है। सब लोग जा रहे खोजे चारों तरफ से, उसमें से एक कन्ना था, कन्ना जानते हो ना, एक आंख वाला, वो बड़े थोड़ा चलाक होते हैं, वो देख रहा था ऊपर, देख लिया, देखा ये बैठे हुए हैं महात्मा, कहा कि देखिए वो बैठे हुए हैं ऊपर, जो विष का भोजन बनाए बैठे हुए हैं, उनको बुलाया आओ नीचे आओ, वो नहीं आ रहा था। सरदार ने कहा तू आओ, आ रहा है कि मैं तुमको बुलाऊं, अपना गन ऊपर ताना, कहा मैं आ रहा हूं, मैं रहा हूं, आ गया। सरदार ने कहा तूने क्या किया हम लोगों को मारने के लिए। वो बेचारा सब सफाई दिया कि मैंने नहीं किया, चोरों ने किया, कैसे सॉरी वो ग्वालों ने किया, सब सफाई बेचारा दिया। कहा ठीक है जब तुमने नहीं किया तो खाओ इसको। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं गुरु जी से हमने महाराज जी से प्रतिज्ञा किया हूँ, उन्होंने हमको पूरा वही बात बताया। सरदार ने कहा तो अपना बात बदल रहा है, कोर्ट चल रहा था ना, कोर्ट में कहीं बात करना चाहिए, बदल देगा तो गड़ा काम से। कहा तो अपना काम बात बदल रहा है, इसका मतलब है कि तू ही इसमें डाला है। तो कान्हा बोलता है महाराज इसके लिए अपने सरदार, बड़ा बात क्या है, खिलाओ उसको, यदि खा लेता है तो हम समझे कि नहीं किया है, नहीं खाता जरूर इसने किया है। और खिलाने लगे, वो खा ही नहीं रहा था, अब लगे मारने, मारने लगे, हाथ पैर टूट गया उसका, जब आए बाप आए माँ करने लगा, अब मरता क्या नहीं करता, अब बेचारा खा लिया। अब शाम को हमें रात को या दूसरे दिन अब आया महात्मा के पास, हाथ पैर टूटा हुआ था बेचारा का। महात्मा ने कहा भाई ये सब क्या हो गया, कहा कि महाराज आप हमको अपना शिष्य बना लो, अब मैं समझता हूँ कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। तो साधु का बात यदि मान लिया होता तो हाथ पर नहीं टूटता ना, नहीं माना तो हाथ पर टूट गया। इसीलिए गुरु वैष्णव अथॉरिटी का बात मानना चाहिए, फिर तकलीफ नहीं होगा। तब फिर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार काम करेंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।